ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देहवतीरुवाच अथाप्योऽजन्तसलिलेशयानम् भूतेन्द्रिये आथ आत्मयं वपुस्ते भूतेन्द्रिये आथ आत्मयं वपुस्थे अनुवाद कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। देवहूति ने कहा, नहीं दोहराइए मत, पहले सुनिए। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। अब कृपया दोहराइए। देवती ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत माफ कीजिएगा लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। तात्पर्य, ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई माता तथा पिता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से वह जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए जो गर्भोदक्षाय विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात हैं। देवहूति भगवान को यह बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ जड़त्व से अस्पृश्य है। चूंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूप भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूलाधार हैं, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है, यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया, मेरे लिए यही अत्यधिक विस्मय जनक लगता है। तो माता देहूति अब इस अध्याय में भगवान कपिल के गुणों का वर्णन, भगवान कपिल के बारे में बताएंगी हमें कि पिछले कई अध्यायों से हम सुनते आ रहे हैं भगवान कपिल की शिक्षाएं, अब हम माता देहूति से सुनेंगे कि किस तरह से हमें परम भगवान, द प्रभुपाद लिखते हैं इंग्लिश में द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उससे थोड़ा और भारी लगता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हम केवल भगवान कहते हैं तो कई बार जो कृष्ण भावना अमृत में भक्त नहीं होते वो भगवान को और देवी देवताओं से भी उनकी बराबरी करते हैं, बस वे उनमें यह समझावट होती है कि शायद वो भी भगवान है, लेकिन इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, द सुप्रीम सुप्रीमो। तो माता देवती वही एक शुद्ध भक्त है और भगवान की माता बनने का उन्हें सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वो हमें इन श्लोकों में, कम से कम इस श्लोक में, समझाने का प्रयास कर रही है कि हमें किस तरह से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह से, किस चेतना से हमें उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो श्रील प्रभुपाद जी जो शिक्षा देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जिस तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान के लिए, भगवान जो है परम दयालु हैं, परम कृतज्ञ व्यक्ति हैं, अगर कृष्ण के लिए अगर कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो कृष्ण उसको भूलते नहीं है। हमने देखा या सुना हमने श्रीमद् भागवतम से या महाभारत से, रामायण से, जितने भी हमारे वैदिक संस्कृति के या हमारे जो भगवान के बारे में जो ग्रंथ हमें बताते हैं उन्हें हम देखते हैं कि भगवान कि जब हम लीलाओं को देखते हैं तो हम देखते हैं भगवान छोटे से छोटे, अगर किसी ने कोई भगवान के लिए कुछ अर्पित करता है, कुछ कार्य करता है तो भगवान कभी उसे भूलते नहीं है। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं जब भगवान श्री राम जंगल में या वन विहार कर रहे थे, वन में आनंद ले रहे थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो शबरी के झूठे भेद उन्होंने खाना स्वीकार किया, क्योंकि शबरी को बोला था कि भगवान इधर आएंगे, एक बार आएंगे, और शबरी कई वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी और वो रोज जिस कुटिया में वो रहती थी उसकी सफाई करती थी बहुत अच्छे से, रोज मतलब एक दिन भी वे उसको अपने सेवा से मुक्त नहीं, मतलब ये नहीं कहती थी आज तो बहुत सेवा हो गई, मैं इतने सालों से सेवा कर रही हूं अब नहीं करूंगी, करती रहती थी। और डेली वो जो जंगल में जो बेर होते हैं, साधारण से बेर, उन्हीं को तोड़ती थी, फिर उनको चखती थी। भक्त मतलब उनमें इतनी भक्ति थी, कई बार ऐसा समझा जाता नहीं, पहले भगवान को ऑफर करो, यह एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन मैं कभी एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे श्री राधानाथ महाराज कि इन सारी क्रियाओं में, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है भक्ति। तो शबरी जब वो बेर खाती थी तो ये सोच के नहीं खाती थी, मैं इसका आनंद मैं कैसे लूंगी, उनमें चेतना ये होती थी मैं भगवान को आनंद कैसे दूंगी, कहीं भगवान को झूठे बेर मतलब भगवान को कहीं खट्टा भी मिल जाए। खैर हमें इसका इमिटेशन नहीं करना चाहिए, वो बहुत ऊंचे स्तर की भक्त हैं। लेकिन उसमें मुख्य बात जो मैं समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि भक्ति, तो भगवान के लिए जो बेर रखती थी, तो जब भगवान उनके पास आए तो भगवान ने जो उस दिन जो बेर रखे थे वो नहीं खाए, भगवान ने वो वाले बेर लिए जो शबरी ने झूठे कर करके रखे हुए थे। तो भगवान इतने भावग्राही जनार्दन है, मतलब छोटी सी छोटी सेवा को वो कभी भूलते नहीं है। और हम अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण की लीला में उनके मित्र सुदामा जब उनसे मिलने गए तो क्या लेके गए थे, सूखे राइस, सूखे चावल, उसे कहते चिप्ड राइस इंग्लिश में, मतलब जो चावल होते हैं उसे गीला करके, उसे मतलब ऐसे पीस मतलब स्ट्रेट करके सीधा करके सुखाया जाता है, जिससे वो बाहर में थोड़े कुरकुरे से लगते हैं। हमारे यहाँ जो बंगाली भक्त हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। तो वो चावल लेके गए थे, और वो भी कोई बासमती चावल लेके नहीं गए थे सुदामा जी, बड़े साधारण से चावल लेके गए थे। तो भगवान ने जब मतलब भगवान ने उनसे छीन के वो खाया, ऐसा नहीं कि सुदामा ने उनको दे दिया। सुदामा तो बेचारे सोच रहे थे क्या करूं मैं, ये दूं कि नहीं दूं, लेकिन भगवान उनके भाव को उनकी भक्ति को अच्छे से जानते थे। परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं, हमारी भक्ति को भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसको और अच्छे से बढ़ाने के लिए विशेषकर भक्त के जीवन में ऐसी क्रियाएं करते हैं कि उसकी भक्ति और बढ़े और बढ़े। तो वो जो सुदामा से वो चावल लेके उन्होंने खाए, जो कि सामान्यतः व्यक्ति जल्दी भगवान को भोग भी नहीं लगाते, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीजें भोग लगानी चाहिए, लेकिन भगवान इन चीजों से बहुत बड़े बड़े उपपकवानों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो चेतना भी होनी चाहिए, वो चेतना तो होनी चाहिए कि मुझे सर्वश्रेष्ठ चीज भगवान को अर्पण करनी है, लेकिन उसमें भगवान भक्ति देखते हैं कि वो किस भाव से मुझे दे रहा है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए थे भगवान ने, और विदुर जी की पत्नी के छिलके खाने लग गए थे। तो भगवान इस तरह से बहुत एक एक छोटे छोटे कार्यों को जो करा भगवान भक्त भक्ति से करने का प्रयास करता है, उस भगवान उसको कभी नहीं भूलते, और उसका पूरी तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो भक्त, तो माता देवती इस श्लोक में यही समझाने का प्रयास कर रही हैं, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इसको, इस श्लोक को बहुत अच्छे से, कि कैसे हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, कृष्ण का कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि जब तक कृतज्ञता नहीं होगी, जब तक हम देखेंगे नहीं कि किस तरह से कृष्ण हमारा भरण पोषण कर रहे हैं हर क्षण, हर क्षण, ये नहीं कि आज दे दिया कल नहीं दिया, ऐसा नहीं, हर क्षण किसी भी योनि में व्यक्ति जाता है, किसी भी योनि में जीव जाता है, कृष्ण परमात्मा रूप में उसके साथ रहते हैं। बस उस दिन का, उस समय का इंतजार करते हैं, किस दिन ये मेरी तरफ मुख करेगा, किस तरह से ये जो उसकी दूषित चेतना है उससे बाहर निकलेगा, किस तरह से जो इसकी अपने आप स्वतंत्र सुख पाने की इच्छा है उससे अलग होगा, क्योंकि कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि स्वतंत्र सुख पा ही नहीं सकता जीव। तो इसी बात को माँ देवहूति समझा रहे हैं। तो माता देवहूति इसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रही हैं। पहले माता देवहूति ने तो ऐश्वर्यों का वर्णन करा है, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा पूर्वक हमें समझाना अपने तात्पर्य में और अच्छे से समझा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। माता देवहूति पहले बताती हैं या प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्रह्मा जी, कि जो ब्रह्मा जी हैं वो अजन्मा कहलाते हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं, जो जिनसे जो भगवान कपिल सामने बैठे हैं देवती माता के, ये कह रहे हैं उसके कारण भी आप ही हैं। मतलब उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करने की सारा संसार, क्योंकि ब्रह्मा जी से सारा, ब्रह्मा जी ने सारे संसार की सृष्टि करी है। अगर हम ठीक से समझें, अगर व्यक्ति ठीक से सुनेगा, हर प्रतिदिन पढ़ेगा पुस्तकों को, सेवा करेगा, तो ये ज्ञान दिव्य दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। तो वो देखता है कि किस तरह से रोज जो ये सूर्य उग रहा है, किस तरह से ये भगवान की कृपा है कि रोज सूरज उगता है, किस तरह से भगवान की कृपा है कि हवाएं बह रही हैं, किस तरह से भगवान की कृपा है कि ऋतुएं बदलती हैं, हमें हर चीज मिलती है। जैसे कि भगवान कपिल ने पिछले श्लोकों में, पिछले अध्याय में समझाने का प्रयास किया कि हमें देखने का अभ्यास करना चाहिए कि परमात्मा कैसे सब जगह उपस्थित है। तो उसी बात को समझाने के लिए माता देवती ने पहले समझाया कि आप ब्रह्मा जी के भी उद्गम हैं आप, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वह वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। कहते हैं ब्रह्मा जैसा व्यक्ति जिसने ये सारा संसार बनाया, सारे भौतिक संस्कार ऊपर से लेकर नीचे तक, उनको वो भी जब ध्यान करते हैं बहुत कई वर्षों तक, हमने सुना है पहले स्कंद में जब कई वर्षों तक उन्होंने ध्यान दिया तब भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए उन्हें। कहते तब भी उन आपके दर्शन नहीं होते। और ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में तो जो भक्त हैं उनको पता ही होगा। तो माता देवती का ये जो कृतज्ञता है प्रकट हो रही है, जो प्रभुपाद जी अगले तात्पर्य के अगले भाग में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी के बारे में बताया, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की भगवान कपिल देव के बारे में बता रहे हैं। मतलब माता सृष्टि, माता देवती का किस तरह से कृतज्ञता है वो समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो लाखों साल तक तपस्या करते हैं तब भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते, जिनके कारण ये सारी हवाएं, मतलब जिनकी मैनेजमेंट के कारण, भगवान की शक्ति के द्वारा जो उनको प्राप्त है उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। तब भी ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी आपके दर्शन नहीं होते। लेकिन अगले श्लोक में माता देवती समझाती हैं कि, या माफ कीजिएगा, अगले श्लोक में नहीं, प्रभुपाद जी इसके अगले तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे, मतलब उसी बात को जो माता देवती कह रहे हैं कि आपका शरीर जो है, पहले उनके उद्गम के बारे में बताया या उनकी शक्ति के बारे में बताया, भगवान की कौन से जो उनके सामने बैठे हैं भगवान कपिल देव, उनके बारे में गुणगान कर रही है माता देवती कि आप वही हैं, आप स्वयं वही विष्णु हैं जिनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। क्यों ब्रह्मा जी के बारे में बता रही, यही बात समझाने के लिए हम जैसे जीवों को कि भगवान के इस ऐश्वर्य को हमें समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, तब हमारे जितने कार्य में, जो भक्ति में कार्य हैं, वो बहुत उसकी जो स्थिति है, जो उसका कार्य करने का हमारा तरीका है, जो चेतना है, बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति देखता है भगवान की शक्ति को। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में या जितने भी ये सेंटर स्थापित करे या मंदिरों की स्थापना करी, प्रभुपाद जी ने ऐश्वर्य पर बहुत ध्यान दिया कि जो हमारी अर्चय विग्रह की पूजा है वो बड़े ऐश्वर्य से होनी चाहिए। जब तक भक्त ऐश्वर्य को ठीक से नहीं समझेगा, वो और भक्ति में आगे बढ़ने के उसके जो चांसेस हैं, जो उसके संभावनाएं हैं, वो कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ऐश्वर्य नहीं समझेगा ठीक से, तो कृतज्ञता नहीं आएगी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कृष्ण, ये भावना नहीं आएगी। सिंपल, जैसे आप अगर साधारण से उदाहरण ले, एक पुत्र को अगर अपने पिता के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी तो पुत्र अपने पिता की सम्मान नहीं करेगा इतना, वो उसको हाँ इनका ये तो कार्य करना है, इस तरह से भाव लेके, जैसा कि हम आधुनिक जगत में देखते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति के परिवार जो होते हैं, वो कृतज्ञता समझाते हैं बच्चों को बचपन से ही कि बेटा उनके पांव छुओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि जब पुत्र बड़ा होगा, जब वो स्वतंत्र होने की उसमें शक्ति आ जाएगी, तो वो कृतज्ञ, वो समझेगा इस बात को, देखिए मेरे माता पिता ने कितना मेरे लिए किया। इसी तरह से जब तक हम भगवान की कृतज्ञता को, कृष्ण की कृतज्ञता, कृष्ण की शक्ति को ठीक से समझेंगे नहीं, उनके ऐश्वर्य को ठीक से समझेंगे नहीं, तो भगवान से जब हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कमी आ सकती है। और फिर ब्रज भाव का तो कहना ही क्या, जहां वो भगवान समझते ही नहीं कृष्ण को। लेकिन एक साधक होने के नाते एक साधक को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, तब वो जितनी भगवान की शक्ति है उसको बहुत ध्यान से समझेगा। देखिए उससे बहुत लाभ होता है, एक तो उसकी जो भक्ति करने की चेतना बहुत अच्छी हो जाती है, वो किसी भी चीज को ये नहीं समझेगा ये मेरा, ये मुझे मिलनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं ना भगवान का कृतज्ञ, मतलब वो ये सोचेगा कि ये भगवान की कृपा है कि मेरे ऊपर, मेरे पास आ रही है। तो भागवत में ये बात बोली भी गई कि जो भक्त इस बात को समझता है कि चाहे उसके ऊपर दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, ये भगवान की कृपा है, तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जितना मर्जी भी दुख आ रहा है, आपकी कृपा भगवान, सुख आ रहा है, आपकी कृपा, आपकी सेवा में। तब जो जीव होता है वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती, इस स्थिति में आ पाता है, क्योंकि ऐश्वर्य समझना उसके लिए जरूरी है, जो कि माता देवती इसमें समझा रही है। वो कह रहे हैं आपका शरीर दिव्य है, ये शरीर सामान्य नहीं है, ये जो आप मेरे सामने बैठे हैं दिव्य हैं, हे कपिल भगवान। उसके बाद माता शैल प्रभुपाद जी समझाते हैं इसमें माता देवती का, कि माता देवती कह रहे मुझे आश्चर्य है, आश्चर्य हो रहा है मुझे कि आप जो ब्रह्मा जी के भी उद्गम है, जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसके में मैं हम विचरण कर रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिससे हम कार्य कर पा रहे हैं, उसके भी उद्गम आप हैं, लेकिन आप मेरे उधर से जन्म ले रहे हैं। देखिए माता देवती आश्चर्य कर रही हैं, भगवान की माता आश्चर्य कर रही हैं। इसी तरह से इस भक्त को कभी कभी, कभी नहीं मतलब सोचना चाहिए कि हे भगवान मेरे हाथ पांव ठीक चल रहे हैं, कृपा है भगवान की, मैं ठीक से देख पा रहा हूं, कृपा है भगवान की, ठीक से सुन पा रहा हूं, कृपा है भगवान की, मैं कभी यहां टेंपल कमांडर ऑफिस में गया था तो वहां बड़ा अच्छा एक वो लगा हुआ है, मतलब अपनी शिक्षा के लिए, उसमें लिखा है कि भक्त की सेवा आपकी कोई, मतलब इंग्लिश में लिखा है, उसका ट्रांसलेशन में बता रहा हूं कि भक्त, अगर भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये आपकी वो नहीं है कि भाई मुझे जबरदस्ती मिल गई, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी प्रसाद सर्विस है तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरी अकाउंट्स में सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी, नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि आपको सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। उसको सामान्य नहीं समझे, ये जरूरत है हमारी कि हमें कृष्ण से कृपा करनी चाहिए कि हमें सेवा में लगाइए। हम रोज जो जप करते हैं सुबह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सेवा की प्रार्थना करते हैं उस वक्त, तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ये सेवा मांग रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, लीजिए सेवा। इसलिए सबसे जो शुरुआत होती है भक्ति की, वो महामंत्र के जप से शुरू होती है, कीर्तन से शुरू होती है, ये सबसे पहली सेवा है हमारी। उस सेवा को भी जो अगर हमें भगवान ने ये जप करने का या जो सौभाग्य प्राप्त किया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे हमारे राधाकांत रमाकांत प्रभु जी ने वहां पे लिखा हुआ है कि सेवा सौभाग्य, बड़ा अच्छा मतलब लिखा है, डोनेशन इंग्लिश में लिखा है, डोनेशन देना, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सेवा सौभाग्य। तो जब हम प्रचार करने जाते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है उससे डोनेशन मांगते हैं, लेकिन ये उसका फॉर्च्यून है, उसकी सौभाग्य है कि उसका जो धन है या जो उसका जो भी वो सेवा करेगा वो उसका सौभाग्य है कि उसको मौका मिल रहा है। तीन अरब लोग हैं भारत में, माफ कीजिएगा पूरे विश्व में, भारत में ये 1 अरब लोग हैं, 100 करोड़ लोग, कितने लोगों को सेवा का मौका मिल रहा है, कितने लोगों को कृष्ण कह रहे हैं हाँ आके डोनेशन दो। तो जो भक्त जा रहा है डोनेशन मांगने उसको भी समझना चाहिए कि ये मेरा सौभाग्य है, और उसको ये संदेश देने का प्रयास करना चाहिए ये आपका सौभाग्य है। नहीं तो कई कई जन्मों के बाद, पहले तो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, उस मनुष्य शरीर में भी पता नहीं कितने, आप जानते हैं पूरे विश्व में कितने तरह के लोग हैं, कोई सौभाग्यवान जो होता है जिसको कृष्ण कीर्तन सुनने को मिलता है, फिर कोई सौभाग्यवान होता सोचता है कि नहीं मैं जाके देखूं आखिर हो क्या रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमित है कई ब्रह्मांडों में, लेकिन व्यक्ति को जब तक यही समझ ही नहीं आएगा कि ब्रह्मांड कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन ब्रह्मा जी हैं, जो कि माता देवती बता रही हैं यहां पर, और खासकर विशेषकर भक्तों के लिए, आम आदमी तो कैसे जल्दी समझेगा जिसको पता ही नहीं है कुछ, लेकिन भक्तों के लिए ये माता बात बता रहे हैं। शैल प्रभुपाद भक्तों के लिए बात समझा रहे हैं, तात्पर्य समझा रहे हैं कि हमें धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण का। तो माता देवती कह रहे आश्चर्य है कि आप मेरे उधर से आ रही हैं। सोचे माता मतलब भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माताएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं बात। कोई भक्त माता का अगर कोई माता का कोई पुत्र अगर भक्त भी बन जाए, मतलब अच्छा भक्त बन जाए, तो कितना उन्हें प्रसन्नता होती है। अगर वो ठीक से कृष्ण भावना में समझी है माता या माता पिता, अगर उनका पुत्र भक्त बन जाता है अच्छा, तो उन्हें बहुत प्रसन्न होती है बहुत। मैं गृहस्थ आश्रम में रहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं गृहस्थों से मिलता हूं, तो जो गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ अपनी सेवा मतलब अपने सेवाओं से या अपने काफी मान लीजिए मतलब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अगर उनकी पत्नी से बात करते हैं कभी तो उन्हें बड़ा सम्मान होता है, कहते हैं मेरे पति अब संन्यास लेने वाले हैं। कई लोगों से मतलब माताओं से मिला, उन्हें मतलब उन्हें वो होता है मेरे पति अब संन्यास लेने के उसमें है, क्योंकि वो ठीक से समझे हैं, पूरा जीवन उन्हें कृष्ण भावना भावित बिताया है, तो उन्हें उस स्थिति का पता है कि देखिए भगवान की पूरी सेवा में लगने वाले हैं। हम मायापुर में थे अभी, स्कूल बनता जब, तो वहां एक जो माता है वो वानप्रस्थ आश्रम में है, तो वो जो पति पत्नी है, वो जो पति है वो पत्नी से को मिले मिले कई कई महीने हो जाते हैं कई बार, तो जो अपनी मतलब जो वैष्णवी जो उनकी दोस्त हैं, जो वैष्णव संघ है, वैष्णवियों का संघ है, तो एक वैष्णवी उनसे पूछती कि आपको कभी कभी उनकी कमी नहीं लगती, वो आते ही नहीं है कई कई महीने। कहते नहीं नहीं, देखिए उनका स्तर देखिए उस वैष्णवी का, कहती नहीं नहीं मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वो प्रचार में जाते हैं जाने दीजिए उन्हें। कहते मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वो प्रचार में जाते हैं, खूब समय बिताते हैं वो अपने वहां वैष्णवियों के साथ, जो भी सेवा करते हैं वो करती हैं, वो अपना प्रचार में जाते हैं क्योंकि वो समझती है इस बात को। तो इसी तरह से माता देवती इस बात को समझ रही, कृष्ण मेरे उधर से आए हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रही है कि कृष्ण मेरी आप आए हैं, आश्चर्य की बात है। कैसे हो सकता है ये, जो पूरे संसार के कर्ता धर्ता, उसके भी जन्म मतलब उसके भी उद्गम करने वाले कृष्ण वो, और फिर ये तो माता देवती विष्णु के बारे में कह रही है, और हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हैं, हमें तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर वो सोच के हैरानी होनी चाहिए, वही आश्चर्य होना चाहिए। इवन चैतन्य लीला में बताया भी गया कि गौरांगरे कृपा करीले विचार, करीले विचार पाए चित्त चमत्कार, कि चैतन्य महाप्रभु की अगर हम कृपा पर ठीक से ध्यान पूर्वक अगर हम उससे विचार करेंगे तो चित्त पे हमारे हृदय में चमत्कार हो जाएगा। वही बात जो यहां पर माता देवती कह रहे हैं, आश्चर्य। कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जो देने आए, वो कोई साधारण वस्तु देने नहीं आए। गोलोक एरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक जो संसार क्या इस वैकुंठ लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ, जिसमें भगवान से प्रेम के आदान प्रदान की जो परम सीमा है, जिसमें जीव सबसे प्रसन्न रह सकता है, आनंद में रह सकता है, उस चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। कैसे जीवों को? कलयुग के जीवों को, जो जन्म से ही शूद्र है, कोई संस्कार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। नित्यानंद प्रभु योग्यता विचार नहीं करते, कोई योग्यता विचार नहीं करके कृष्ण धन बांट रहे हैं। लो कृष्ण प्रेम, लो कृष्ण प्रेम। कौन सा कृष्ण प्रेम? गोलोक रे प्रेम धन, वैकुंठ प्रेम धन नहीं। भगवान श्री राम के धाम में जाएंगे तो आप भगवान के साथ खेल नहीं सकते, वहां परम आनंद, सारे रस, सारे रसों का, सारे आनंदों का हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारी इच्छा वैसे सेवा कर सकते हैं। वो उसी चिंता को करते हुए माता देवती आश्चर्य कर रही है कि आश्चर्य कि आप मेरे उधर से आए हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत या गौड़ीय वैष्णवों को ये चिंतन करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया हमें। बड़े ध्यान पूर्वक फिर जप करना चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक फिर जो भी सेवा मिली उसको करना चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई भक्ति सेवा करने का मौका मिलता तो धन्यवाद करना चाहिए और यथाशक्ति उसकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो जिस समाज में हम रहते हैं, कृष्ण भक्तों का समाज, वो वैकुंठ बन जाता है। कोई कुंठा नहीं होती फिर उसमें, क्योंकि सब एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, यही तो है वैकुंठ। पहले प्रभुपाद जी इसीलिए कहते थे कृष्ण भावनामृत के जितने भी मंदिर हैं वो वैकुंठ हैं, क्योंकि ये चेतना प्रभुपाद जी देना चाहते हैं। इसे कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संघ, अमृत संघ है, आनंद आना चाहिए। तो ये आश्चर्य जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, देखिए अनुवाद में नहीं है, माफ कीजिएगा, हाँ श्लोक में नहीं बोला गया, लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने तात्पर्य में, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। क्यों ब्रह्मा जी के बारे में बता रही है माता देवती? क्योंकि वो इस भावना को समझ रही है, उनके ऐश्वर्य को समझा रही है। इसी तरह हमें समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करने, बड़ा ध्यानपूर्वक शुरू से ही ध्यानपूर्वक जप, जो इसका मूल जो स्रोत है ध्यानपूर्वक जप। जब ध्यानपूर्वक जप होगा उसके बाद ध्यानपूर्वक सेवा होगी, ध्यानपूर्वक अध्ययन होगा, तब दिव्य ज्ञान गुरु के आदेशों में रहते हुए, गुरु के निर्देशन में रहते हुए, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु के निर्देशन में रहते हुए जब सेवा होगी, तो इस तरह से जो माता देवती का जो विचार है, माता देवती का जो चेतना है, वो हमारे हृदय में आएंगी और धीरे 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 हम भगवान कृष्ण की जो हमारा गोल है या जो हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, कि हम 24 घंटे हमारे भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान के धन्यवाद कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं, तब हम सब भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे, भगवान अधिकारी बना देंगे कि हाँ ये जीव जो है ये अब अधिकारी है। तो भगवान फिर कठपुतली बना देते हैं ऐसे जीव को अपने हाथों की, उनसे सेवाएं करवाते हैं, फिर हम देखते हैं जीव बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हम सुनते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के महाराज के बारे में कि वो जिस जगह पे जाते हैं जमीन में से ऐसे उठा के मंदिर निकाल देते हैं। हम सुनते हैं हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी के बारे में जिस गांव में जाते हैं पूरा का पूरा गांव कृष्ण भावनामृत हो जाता है। हम सुनते हैं हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के बारे में जहां वो कीर्तन करते हैं वहां कई घंटे लोग नाचते ही रहते हैं। हम सुनते हैं कई ऐसे सन्यासी हैं जो विदेशों में इतनी मेहनत प्रचार करके प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को उनको उन्होंने अपना जीवन बना दिया है, भगवान ने उनको अपना कठपुतली बना दिया है। पृथ्वी त्याचे नगर अधिग्रहण सर्वत्र हो प्रचार मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु कुट वो बन गए हैं, सर्वत्र हो प्रचार मोर नाम। अभी भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहां कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं पता, प्रचार करना चाहिए, किताबों का वितरण करना चाहिए। लेकिन ये बात समझते हुए अच्छे से ये जब हम जप करेंगे रोज समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि भगवान कितने कृपामय हैं। 3 मिनट हैं, किसी का कोई प्रश्न कोई टीका या कुछ बोलना चाहे और अभी प्रसाद की सेवा है, आप कुछ लोग प्रसाद पाएंगे कुछ लोग प्रसाद सेवा करेंगे, तो दोनों ही कृपा है, सेवा करना भी पाना भी। कृपा करते हुए मतलब उसको समझते हुए उस चेतना से जब हम प्रसाद लेंगे तो शत प्रतिशत है कि कृष्ण भावना में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे एक गुरुकुल के एक हमारे सदस्य हैं अध्यापक, वो कहते हैं कि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि जब हम प्रसाद लेते हैं तो 2 जगह से या 3 जगह से पानी आना चाहिए। एक तो प्रसाद जब आता है सामने तो मुंह से तो पानी आता ही आता है, फिर आंख से भी पानी आना चाहिए और मस्तिष्क से भी कह रहे थे शायद पानी आना चाहिए कि मतलब चिंतन करते हुए भगवान का कि ये कृपा है, ये देखो दया को समझते हुए अपने आप को तुच्छ मानते हुए कि ओ माई हे भगवान मुझे प्रसाद मिल रहा है, भगवान की दया समझते हुए आंखों से अश्रु आने चाहिए कि लेकिन प्लेट में पानी ना गिरे इस बात का ध्यान रखिएगा और जो सेवा कर रहे हैं उनकी आंखों से भी पानी ना आए, क्योंकि फिर आपका महा 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 प्रसाद खाएंगे भक्त लोग। तो अपने भावों को नियंत्रित करते हुए दोनों सेवा कीजिए। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।